ॐ शं नो मित्रावरुणा शं नो भवतु अर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु मा भवतु वक्तारम् अवतु ॐ शान्ति शान्ति। प्रसंग चल रहा है ज्ञान वैराग और मोक्ष का। सांख्य दर्शन तो इस विषय में कहता है कि हृदय ज्ञानानुमुक्ति ज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाता है। तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग और कहता है कि दुखों की जो निवृत्ति है वो है मोक्ष है। अब दुखों की निवृत्ति जब तक इंद्रियों के कुछ भोग रहेंगे तब तक कुछ न कुछ सुख और दुख का भोग तो इंद्रियों के द्वारा बना ही रहेगा। अब शंका होती है कि इस लोक में इस स्थूल शरीर में तो सुख दुख सब में देखने में आते हैं। ज्ञानियों के पास भी रहकर देख लो और मूर्खों के पास भी और मध्यम दर्जे के व्यक्तियों के पास भी कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक कोई किसी प्रकार का कुछ न कुछ कलेश साथ लगाए रहेगा। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि सुख और दुख होते हुए भी वह ज्यादा महसूस नहीं किया करते हैं। अब बहुत से लोग हमें आपको जरा सा चाकू छुरा लग जाए तो सी करने लगते हैं। अमृतसर में था एक पठान आया, मैं अस्पताल गया हुआ था तो उसके क्या नाम उंगल में कुछ हुआ हुआ था तो डॉक्टर कहने लगा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। अच्छा कर लो, तुम चार पाई पे क्या जरूरत है, चार पाई पे तुमको और फार्म सब को जरूरत नहीं कर लो। उसने मुंह इधर कर लिया और वो अपना उंगली काटी चीरे कूरे लगाए सब कुछ आधा घंटा उसको लगा मट्टी उसके मुंह पर कुछ भी विकार नहीं दे। तो कोई वो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी तो था ही नहीं। अब जैसे क्षत्रिय लोग युद्ध में लड़ते हैं हथियार तलवार शस्त्र उन पर बरसते रहते हैं लेकिन वहां रोते थोड़ा ही हैं बल्कि और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो और साधारण व्यक्ति जैसे हमें लोगों को कोई आपत्ति आ जाती है तो झट उसको अनुभव करने लगते हैं। तो ज्ञानवान भी होता है अगर देह अध्यास चला जाता है मनुष्य का तो एक प्रकार से ये युद्ध प्रिय जो होते हैं इनमें भी देह अध्यास कम होता है। ये परवाह नहीं करते लड़ते मरते मारते करते। तो ज्ञानी में भी देह अध्यास नहीं रहता है। मैं अमृतसर में रहता था, एक महात्मा मेरे से और एक मील दूर रहा करता था नहर पर एक वृक्ष के नीचे। तो अमृतसर के रामशरण दास जी उस महात्मा को कहने लगे कि महाराज आपको यहां बहुत तकलीफ होती है खाने पीने वगैरह की, यदि आप मेरे यहां चले मेरी बैठक में मेरे मकान में सारी व्यवस्था कोई आपको। कहने लगे भाई चले तो जाएंगे पर हम फिर मकान से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा महाराज नहीं निकलना। तो उनके कहने पर वो महात्मा अमृतसर में ले आए। तो उसने क्या किया, अच्छा भला था, एक रस्सी यहां बांधी और एक रस्सी यहां बांधी और कमरे से बाहर एक टट्टी थी पास में तो वहां ऐसे चला जाया करता था टट्टी, वो खिला दिया करते थे। वो 16 वर्ष उस कमरे में रहे हुए और ये रस्सियां बांध कर चलना फिरना छोड़ दिया। अब बतलाओ कहां इनको दे अध्यास था, देह को तिरण की तरह समझ करके जानबूझ करके इतना कष्ट उठाते रहे। तो इसलिए जब तक देह अध्यास रहता है, देह के शरीर के साथ प्रीति रहती है, ममता रहती है, तब तक इसमें विशेष सुख दुख की भावना हुआ करती है। तो जब तक देह अध्यास नहीं जाएगा तब तक दुख निवृत्ति होनी नहीं, ये चाहे आप हो या मैं हूं कोई। तो देह ही सबसे प्यारा अपना देह है। वहां हरिद्वार में मैं रहता था, एक बंदर को क्या तमाशा किया लड़कों ने, विद्यार्थियों ने, कि एक कढ़ाया था पाया और वहां थोड़ा सा उसको गर्म रखा और बंदरी को उस पर बैठा दिया। बच्चे को लेकर बैठी थी, वो तंग करती थी वहां लड़कों को, विद्यार्थियों को। तो उसने गर्म कढ़ाया था, रोटी बनाने का लो था बड़ा, उसको थोड़ा सा गर्म तो नहीं करा, पहले वहां पकड़ के बैठा दिया रस्सी से फूटी गाड़ के। तो वो थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया तवे को, तो वो इधर उधर हो जाए इधर उधर। बच्चा तो पहले तो ऊपर रखे रखा, यहां लगाए, फिर यहां हुआ कि उस बच्चे को उतार के उसने अपने पैरों के नीचे लेके खड़ी हो गई। तो अपना जीवन पशु पक्षियों को भी इतना प्यारा है कि अपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे, अपने पैरों को गर्मी से बचाने के लिए बच्चे को मारना पसंद किया, आप अपना जीवन। तो ऐसा देखने में आता है, जब ये पार्टीशन हो रहा था, एक परिवार हमारे परिचित हैं, 17 व्यक्ति थे परिवार के, और उन्होंने एक मोहनलाल एक बच करके आया था बूढ़ा। मैंने कहा अरे नालायक तू भी मर जाना तो तू क्यों, हमारा आज मरने का दिल नहीं कर, पत्नी को भी मरते देखा, बेटे को भी, पुत्र वधु को भी, सारे लड़कियों को भी, तेरा मरने को देखा। तो ये जीवन इतना प्यारा और ममता वाला होता है कि पूर्वम आत्मा न रक्षेत पश्चात दारा सुतेरति, जब आपत्ति मुसीबत आती है तो मनुष्य अपने आत्मा की रक्षा के लिए करता, पीछे दूसरों की रक्षा करता। और ये जितने भी संप्रदाय वर्तमान अब हैं और पहले हुए हैं, सब कहते हैं कि इस शरीर के मरने के बाद मोक्ष में जाता है, मुक्ति में रहता है। अब आदि सृष्टि से अब तक है, देख लो जो प्रधान प्रधान योगी ज्ञानी ध्यानी हुए हैं या संप्रदायों के आचार्य हुए हैं, जैसे मोहम्मद, क्राइस्ट, कृष्ण आदि, और पहले उनसे भी बहुत आचार्य जो कई कई लाख वर्ष पहले भी हो चुके हैं, इतिहास जिनके लिए कहते हैं, ये सारे ही पराया स्वर्ग लोक में गए हैं और अभी तक कोई लौट के तो आया नहीं। जो वहां का हाल बता देता तो हम भी चले जाते। जितने गए हैं अभी तक लौट कर कोई नहीं आया, किसी भी टाइम में नहीं आया। अब केवल अनुमान ही तो है ना, प्रत्यक्ष तो हम यहां दुख और कलेश देखते हैं। मरने के बाद की बात कहते हैं कि तब मोक्ष में जाता है। इतने पैगंबर चले गए हैं दुनिया के, कोई लौट के वहां से आया नहीं, हाल भी नहीं बताया। तो अब अगर हम यत्न करते रहे उसके लिए तो क्या संभावना है हम जाके हम भी लौटेंगे एक नहीं, और वहां क्या उनको मिलता है। अब ये तो अनुमान ही हम कर लेंगे, प्रत्यक्ष तो वो दिखते नहीं क्या करते हैं वहां, प्रत्यक्ष तो देखने में आते नहीं जितने पैगंबर गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन है, क्या सुख दुख आदि भोगते हैं। तो ये केवल अनुमान ही है हमारे, तो अनुमान गलत भी हो जाया करता है। जैसे ऊपर एक पहाड़ गिरा है, ये नदी आ रही है, उसमें मिट्टी घुल घुल करके पहाड़ की आ रही है, तो हम यहां अनुमान करते हैं भाई बादल हुए हुए हैं, वर्षा हुई होगी इसलिए मिट्टी वाला पानी आ रहा है। अगर वहां जाकर देखते हैं तो पहाड़ गिरा हुआ है, तो अनुमान भी वह प्रत्यक्ष को देख करके अनुमान भी गलत हो जाया करते हैं। तो इसी प्रकार स्वर्ग और मोक्ष के विषय की बातें चल रही है। अब वहां सूक्ष्म शरीर रहते हैं, क्या उनको मिलता होगा और वही क्यों विशेषता मानी जाए स्वर्ग में, वहां कोई ज्यादा भंडार पड़े हैं संसार के पदार्थों के, यहां नहीं है, वहां किसी देश विशेष में उनको क्यों जाने की जरूरत है, क्या यहां परमात्मा नहीं है, क्या इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, दूसरे देशों में, दिल्ली में परमात्मा नहीं रहता जो उसको भोगने के लिए वहां जाए इतनी दूर है। तो इसलिए स्वर्ग के विषय में कुछ भ्रांति ऐसी बनी हुई है। अरे ये विद्वान लोग भी अंधे नहीं ये माना यथा अंधा, जैसे कोई अंधों के पीछे चल के अंधे ही खड्डे में गिरते हैं, तो ये विद्वान लोग भी वर्तमान के सालवेशन के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते रहते हैं। अगर सालवेशन नाम की चीज है तो वो इसी शरीर में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। शरीर है, इसमें तो सालवेशन भोगने में नहीं आया, तो मरने के बाद उस सूक्ष्म शरीर में क्या आशा हो सकती है कि उसको सालवेशन मिल जाएगा, इसको तो मिला नहीं, ये तो जीवन भर दुख भोगता रहा, कलेश भोगता रहा, कुछ न कुछ बने रहे, सर्वथा सुख का जीवन मिला नहीं है, मरने के बाद सुख के जीवन की कैसे आशा हो सकती है। एक बात अच्छा माना, थोड़ी देर के लिए इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर जाता है और उसको तुम स्वर्ग में मानते हो। हिंदुओं का विश्वास है, हिंदू धर्म का, कि सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में जाकर के सुखों को भोगता है। मैं भी अपने ग्रंथों में वर्णन करता हूं, पंचस्थन मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का भोग सूक्ष्म शरीर करता है, परंतु उस सूक्ष्म जगत में भी उसके लिए अब इस सृष्टि का परलय होना है, कोई 6-7 अरब वर्ष के बाद विनाश भाव को प्राप्त होगी, क्योंकि ये संसार उत्पन्न हुआ, इसमें पुराना होते होते खत्म होते, तो क्योंकि संसार को परलय होने में कई अरब वर्ष लगते हैं, तो कई अरब वर्ष तक सूक्ष्म शरीर गया वहां रहेगा और फिर अंत में एक ऐसी परलय आएगी कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहने, ये भी क्योंकि उत्पन्न होकर आए हैं 8 अरब वर्ष के बाद ये भी परलय काल में चले जाएंगे, विनाश भाव को प्राप्त हो जाएंगे, तब केवल परमात्मा और इस संसार का उपादान कारण सूक्ष्म पदार्थ रह जाएगा, इसको हम प्रकृति कहते हैं। अब वो जो अवस्था होगी वहां भोगने की कोई चीज है, शरीर वहां नहीं, क्योंकि यहां तो हम शरीरों के द्वारा सुख दुख आदि भोगते हैं, परलय काल की अवस्था में न इंद्रिय होनी, न बुद्धि होगा होगी और न चित्त होगा, ये भी विनाश भाव को प्राप्त होकर प्रकृति में लीन होगी, तो वहां किस प्रकार से क्या सुख भोगेगा ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि दूर की बात है, बहुत आगे की बात है, अरबों वर्ष आगे की बात है, उसका हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि वहां उस वक्त कैसी अवस्था होगी जीवात्मा की और परमात्मा की। तो इसलिए सालवेशन के विषय में केवल हमारी अनुमानी की कल्पनाएं हैं, जैसे यहां हम शांति से बैठते हैं, कुछ सुख सा आनंद सा प्रतीत होने लगता है, सुखानम या किसमें प्रतीत होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो अनुकूल हमारे कर्म है उस कर्मों के आधार पर अगर हमारा मन काम करता रहता है तब तो हमें सुखों की प्रतीति होती है उस मार्ग में, उन कर्मों को करते हुए भी, उन पदार्थों का भोगते हुए भी, और अगर हमारे विरुद्ध कोई बात जाती है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, प्रतिकूलता यहां बनी ही रहती है, कुछ न कुछ प्रतिकूलता बनी रहती है प्रत्येक को, योगी को, ज्ञानी को भी। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों वर्तमान रहती है इस स्थूल शरीर के होते हुए, दोनों का अभाव नहीं होता, ऐसा ही अनुकूल ही जीवन बना रहा है ऐसी बात नहीं है, जैसे बहुत लंबा हो जाएगा।